नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की शुरुआत के बाद से 99% वस्तुओं पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% की गई। हमास को निशाना बनाकर दोहा पर किए गए इजरायली हमले के बाद चर्चा के लिए कतर आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जैस्मीन लंबूरिया के बाद मीनाक्षी हुड्डा ने भारत के लिए 2रा स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजों को बधाई दी। और एशिया कप क्रिकेट में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय असम यात्रा के दौरान 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी आज सुबह दरंग जिले के मंगलदोई गए, जहां उन्होंने दरंग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और असम भी देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि अब पूर्वोत्तर के विकास का समय है और केंद्र कनेक्टिविटी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से लोकल के लिए वोकल होने का आग्रह किया।
रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए।
उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी के नारंगी और दरांग के कुरुवा को जोड़ने वाले नए पुल और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना के निर्माण का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। बाद में प्रधानमंत्री ने गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया। उन्होंने रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने गहरे जल ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और ये जैव एथेनॉल संयंत्र इस लक्ष्य की ओर एक कदम है।
हरित ऊर्जा के उत्पादन में भारत तेजी से कदम उठा रहा है। 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
प्रधानमंत्री कल गुवाहाटी में संगीत सम्राट भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और महान गायक की जीवनी का विमोचन किया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंच गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सुधार, परिवर्तन, बदलाव और परिचालन। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 8वें पोषण माह के साथ 16 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत के बाद से 99% वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चेन्नई में व्यापार और उद्योग संघ के एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आज कहा कि 8 साल पहले जब ये कर प्रणाली लागू की गई थी, तब कुल 65 लाख कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान किया था। आज ये संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कर प्रणाली से एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को बल मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मंत्रालय को जीएसटी पर एक विशेष पैकेज लाने के लिए प्रोत्साहित किया था और अगली पीढ़ी के जीएसटी को विभिन्न हितधारकों और मंत्री समूहों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में आज एक निजी मीडिया संगठन के वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही।
Our farmers, our technicians, our workers, our startups, our Vishwakarmas, everybody is working for a better future for 1.4 billion Indians. In the coming 20-22 years in the Amrit Kal, by 2047, when we are celebrating 100 years of independence, India will be a 30 trillion dollar economy.
श्री गोयल ने कहा कि अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों ने कराधार प्रणाली को सरल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका यह सपना उस समय साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती की। आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधारों पर एक नजर डालते हैं।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े टैक्स कटौती की घोषणा की है। चश्मा और लेंस जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। कम जीएसटी की वजह से अब विद्यार्थियों, बुजुर्गों और कम आय वाले परिवारों के लिए नजर सुधार सस्ता और आसान हो जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम न केवल मांग बढ़ाएगा बल्कि चश्मा उद्योग को भी बढ़ावा देगा। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में लखनऊ उत्तर प्रदेश के पंकज जारिया ने कहा,
सरकार का जीएसटी करा है सभी चीजों पे कम और इसमें जो मेनली चश्मे पे कम करा है इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए भारत में करीबन 50-60% लोग मैं समझता हूँ चश्मे लगाते हैं। ये पूरे भारत के लोगों के लिए बहुत ही फायदे की चीज है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जीएसटी दरों में कटौती से लोग चश्मों को आसानी से खरीद सकेंगे और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। यह ऐतिहासिक सुधार स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए और अधिक सस्ता बनाकर देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेंगे। समर्थ सिंह के साथ दृष्टि पुण्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले हफ्ते खाड़ी देश में फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास पर हुए इजरायली हमले के बाद कतर के लिए समर्थन जुटाने के लिए अरब इस्लामी देशों के नेता कल दोहा में बैठक करेंगे। ये आपातकालीन शिखर सम्मेलन आज विदेश मंत्रियों की एक बैठक के साथ शुरू हुआ। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसार ने कहा कि कल शिखर बैठक में कतर पर इजरायली हमले से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले नेताओं में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और इराक के प्रधानमंत्री मोहसिया अल सुदानी शामिल हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान भी दोहा में होंगे लेकिन बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज इसराइल पहुंचे। रूबियो की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजरायली सेना हमास को खत्म करने के इरादे से गजा शहर में अभियान तेज कर रही है। इसराइल इस शहर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है जहां लगभग 10 लाख फलस्तीनी शरण लिए हुए हैं। रूबियो और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंधक वार्ता और गजा के पुनर्निर्माण पर बातचीत होने की उम्मीद है। रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण चीन पर 50-100% तक टैरिफ लगाने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा पर चीन ने अमरीका की आलोचना की है। शनिवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंध उन्हें और जटिल बना देंगे। रोमानिया ने बताया है कि रूस का ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुस गया है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन की दक्षिणी सीमा के पास ड्रोन का पता लगाया। मंत्रालय के अनुसार ड्रोन आबादी वाले इलाकों के ऊपर नहीं उड़ा था और न ही इसके तत्काल कोई खतरा था। रूस ने अभी तक रोमानिया के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसाए रूस के 3 ड्रोन को मार गिराने की सूचना दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं के लिए राजस्व खरीद में तेजी लाने, सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यम को समर्थन देने के लिए रक्षा खरीद मैनुअल DPM 2025 को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में आज बताया कि संशोधित दस्तावेज आधुनिक युद्ध के युग में सशस्त्र बलों की उभरती आवश्यकताओं के लिए सहायक होगा। ये तीनों सेनाओं में संयुक्तता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने 2047 तक भारत को शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की मोदी सरकार की वचनबद्धता दोहराई। 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खेल परिसर एथलीटों के प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाओं के अलावा इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए विश्व स्तरीय एक्वाटिक परिसर और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेब्स और OTT एक अद्भुत मंच है। पटना में आकाशवाणी से बातचीत में श्री जाजू ने बताया कि इसे भविष्य में देश में वीडियो साझा करने के मंच के रूप में विकसित किया जाएगा।
आने वाले समय में इसको हम एक देश का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी विकसित कर रहे हैं और इसमें ना केवल लाइव चैनल्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ बहुत अच्छा ट्रेंड पूल कंटेंट भी है, बहुत अच्छा आर्काइवल कंटेंट भी इसके ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिकेशंस डिवीजन का भी जो हमारी किताबें हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, उसको भी इसमें एक्सेस किया जा सकता है। तो हम सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वेव्स OTT को अपने फोन पे, अपने टेलीविजन पे डाउनलोड करें।
पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और असम में आज 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप शाम 4:41 पर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र उदलगुरी था। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नमो युवा दौड़ का आयोजन करेगी। ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि घग्गर नदी में पानी बढ़ने के कारण सिरसा जिले में कई स्थानों पर किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। श्री दुबे सिरसा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे। दौरे के दूसरे दिन आज श्री दुबे ने कहा कि हिसार घग्गर नाले के उफान पर होने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे।
हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ित के साथ तत्परता के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा राहत एवं निगरानी, तत्काल राहत निश्चित रूप से आम पब्लिक के बीच में जाके जिला प्रशासन की इकाई अभी काम कर रहा है।
मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों के दौरान तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तेज बारिश की संभावना है। जैस्मिन लंबोरिया के बाद मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली जा रही चैंपियनशिप में जैस्मिन पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा को हराकर फेदरवेट वर्ग में चैंपियन बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी को बधाई दी है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए के मैच में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को शुरुआती झटके दिए। दुबई में खेले जा रहे मैच में ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 11वें ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर सुधारों की शुरुआत के बाद से 99% वस्तुओं और GST दरें 12% से घटाकर 5% की गई। हमास को निशाना बनाकर दोहा पर किए गए इजरायली हमले के बाद चर्चा के लिए कतर आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।